नमस्कार आदाब श्रोताओं, पेश करती हूँ तिरुपुर शहर में हिंदी बोलने वाले श्रमिकों की स्थिति पर एक रिपोर्ट। दोस्तों, 11 जून को तिरुपुर के सिडको औद्योगिक स्टेट में उनकी शिफ्ट के बाद श्रमिकों ने एक समूह बनाकर एक शराब की दुकान के पास एकत्रित हुए। वहां एक उड़िया और एक तमिल कार्यकर्ता के बीच बहस छिड़ गई। उड़िया और एक तमिल कार्यकर्ता, जिसने 22 साल के युवा उड़िया आदमी को तिरुपुर जनरल अस्पताल में आईसीयू में छोड़ दिया था। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार दो श्रमिकों के बीच अपमान की अस्थिति पैदा हुई। बाद में स्थानीय तमिल कार्यकर्ता अपने दोस्तों को बुलाकर उड़िया लड़के की पिटाई की। बहुत ही कठिनाई के साथ अपने दोस्तों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने गलत तरीके से उसे मृत घोषित कर दिया और क्षेत्र में हिंदी भाषी प्रवासियों के बीच तेजी से यह अफवाह फैल गई। अगले दिन सभी हिंदी भाषी इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सिडको गेट पर खड़े होकर सभी श्रमिकों को प्रवेश करने से रोका गया। 13 जून को सिडको कंपनियों ने तनाव को कम करने के लिए छुट्टी की घोषणा की। श्रोताओं, साझा मंच के रिपोर्टर रफी ने लंबे समय के निवासी और तिरुपुर में सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने पिछले इन 13 वर्षों में अपने आसपास में बदलाव और तनाव देखा है। उसने हमें बताया, जब वहां स्थानीय श्रमिकों की संख्या ज्यादा है, तब श्रम बाजार श्रमिकों के पक्ष में ज्यादा था।
तो उनके लिए वर्कर रेडी है, एक निकल गया तो दूसरे 4-5 आ जाएंगे, वो लोग बाहर से बुला लेंगे। वो लोग जो रेट देना चाहे, वो बाहर के लोग नए आते तो उन लोग को क्या पता क्या यहाँ का रेट क्या है, इस पीस का क्या रेट है, एक जन का कितना शिफ्ट होना चाहिए, टेलरों का कितना शिफ्ट होना चाहिए, ये तो पता नहीं रहता वर्कर्स लोग को। सस्ते में काम कर लेते हैं, तो इसमें भी तमिल वाले को थोड़ा चिढ़ाव है कि हम लोग को काम नहीं मिल रहा है, बाहर से आने वाले लोगों को काम मिल रहा है। हम लोग अगर थोड़ा भी रेट बढ़ाने को बोलते हैं तो आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं तो वर्कर्स है। हिंदी वाले सभी लोग जितने रेट बोलते हैं उतने ही में लोग काम कर लेते हैं, तो ये भी थोड़ा एक चिड़चिड़ापन है उन लोग में। हम ये कहना चाहेंगे कि हर इंसान को और हर एक कंपनी में एक ही रूल होना चाहिए। अगर चेकिंग वाले को एक कंपनी में अगर 250 दे रहे हैं, चाहे 500 दे रहे हैं, सिर्फ 320 दे रहे हैं सिर्फ, तो उसी तरह वो तमिल वाले हो, चाहे हिंदी वाले हो, चाहे नया वर्कर्स हो, चाहे पुराना वर्कर्स हो, सबको एक ही बराबर देना चाहिए ना।
प्रवासियों मजदूरों की यह अज्ञानता और गरीबी यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें मिलने वाले अधिकारों और हकों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह न केवल मजदूरी ही है बल्कि अन्य लाभ भी है।
पीएफ के बारे में कुछ पता नहीं होता, अगर वो 6 महीने काम किए, साल भर काम किए, तो अगर एक दो बार अभी अर्जेंटली उसके घर पे कोई गुजर गया है, वो अब पीएफ के चक्कर में अगर एक बार रिजाइन भी कर देता है तो कंपनी वाले जल्दी देते नहीं है कि आप उसको एक हफ्ते के अंदर दे दे। वो उस वक्त वो फॉल्स निकालेंगे कि आपका नेम स्पेलिंग गलत है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको पैन कार्ड बना के देना पड़ेगा। तो इस वजह से कितने जन अब इसके चक्कर में तो पड़ेंगे नहीं, उसके फैमिली वहाँ पे बीमार है तो उसको जल्दी पहुँचना है, तो क्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो ये सब में फायदा किसका है, कंपनी वाले का हो रहा है ना। अब ESI कर रहे हैं, ESI में कितने मजदूर को हॉस्पिटल ही नहीं मालूम है। अब बीमार भी पड़ते हैं तो मेडिकल जाते हैं, दवाई करते हैं, कोई ऑपरेशन करवाना हो तो 10-15 हजार लगा के ऑपरेशन करवाते हैं, हॉस्पिटल कहाँ है ये भी नहीं मालूम। उसके बाद जो पर्ची स्लिप दे रहे हैं, कितने जन को पढ़ना ही लिखना नहीं आता है, उसमें से हॉस्टल का कितना काट रहे हैं, उसका रहने का कितना काट रहे हैं, खाने का कितना काट रहे हैं। 12 घंटा काम करा के पर्ची में 6 घंटा लिखा रहता है, वो लोग पढ़ थोड़ी पाते। जो पैसा मिलता है सिर्फ देखते हैं स्लिप में, वही पैसा लिखा है, उतना पैसा लिखा है लेके अपना चुपचाप हो जाते हैं। कितने जन को तो स्लिप के विषय में सही से नहीं मालूम। दूसरी बात है, हम देखिए ऑटो वाले को पकड़ लीजिए, आजकल ऑटो वाले इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, एक मान लीजिए बाहर से जो आए हैं उन्हें ये हॉस्पिटल कहाँ है ये नहीं पता रहता है, ऑटो वाले को बोलेंगे कि हमें इस हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, कितना लेंगे, तो ऑटो वाले जान जाते हैं कि हाँ भाई नया आदमी है, इनसे 700-800 हजार मांग लो दे देंगे। अब उसकी जगह पे फिर तमिल वाले को जब कुछ होता है तो तमिल वाले को जब ये वो लोग बोलते हैं कि तमिल वाले को देख के थोड़ा रेट बढ़ाना तो चाहेंगे, जान जाते हैं तमिल वाले हैं, तो वो लोग 1000 तो नहीं बोलेंगे, फिर भी 800-900-1050 घाटा करके तो बोलेंगे, लेकिन तमिल वाले सब बोलेंगे इतना तो नहीं होता। तो ऑटो वाले बोलेंगे आपको जाना है तो जाइए, नहीं तो आप किसी और साधन से जाइए। के पीछे मान लीजिए बगल में खड़ा ही है, अभी फिर दूसरा कोई हिंदी वाला कुछ ऑटो से बात कर लिया हमें इस जगह जाना है, तो ऑटो वाले उसको उसी रेट ज्यादा रेट बोल दिया, फिर भी वो बैठ कर चले गए, तो उसमें भी वो तमिल वाले को गुस्सा है। हमें पता है कि ये जगह कितनी दूरी पे है और कितना रेट होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता, और उनको ऑटो वाले जितना बोला है वो उतने में बैठ के चला गया, लेकिन हम उतना देंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि वो दूरी कितना है, तो वो हमें लेकर नहीं जा रहा।
फिर भी इस भेदभाव को अपने हितों की लड़ाई के रूप में स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा बदल दिया जाता है। केवल इन बाहरी लोगों के कारण उन्हें लगता है हमारी स्थिति खराब हो गई है। उन्हें लगता है कि इन प्रवासी मजदूरों को उनके मुताबिक मेहनत ताना मिलता है।
उत्तर भारत को कंपनी आसानी से मिल जाती है, यहाँ आज जो उतरे कल कंपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई परेशानी नहीं है। कंपनी के फायदा है ना, वो नए आदमी आए हैं या तो फिर उन्हें वहाँ से ट्रेनिंग दे के ले आया गया हो, जिसे सिलाई मालूम है ट्रेनिंग देकर। अब चेकिंग पैकिंग में तो 2 दिन के आपको 1 हफ्ता का ट्रेनिंग में देंगे, अगर बिल्कुल न्यू है वो सिलाई भी नहीं जानती, कभी चेकिंग पैकिंग भी नहीं की, पैकिंग करना कोई बड़ी बात है नहीं, जो भी नया आदमी 1-2 घंटा देखेगा तो समझ जाएगा कैसे करना है। बाहरी मजदूर जो है बहुत सस्ते में मिल जाते, उसके ऊपर से भी आदमी कमीशन खाने लगते, जो लेकर आते हैं उन्हें भी वो भी कमीशन खाते, फैक्ट्री वाले तो खा ही रहे हैं, फिर उसको जो लेकर आता है कॉन्ट्रैक्ट के तल पर वो भी कमीशन खाते हैं, उससे बचकर उन लोगों को मिलता है।
स्थानीय अर्थव्यवस्था में स्थानीय श्रमिकों को भी कीमतें महसूस होती हैं और उन्हें ऊंचे दरों पर भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, और ऑटो वाला और मकान मालिक उनकी कोमलता का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, एक उड़िया लड़का अपने घर से दूर निकलता है सिर्फ जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए, लगातार संघर्ष करता है सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसे भी समाज में वो स्थान हासिल होगा जहां से वो अपनी जिंदगी को एक ऊंचाई की ओर ले जाने में सफल होगा। पर उसके इस सपनों को कहीं न कहीं किसी की नजर लग जाती है और उसके अरमान, उसके सपने पतन के गहरे कुएं की तरह धकेल दिए जाते हैं। बहुत से श्रमिकों के बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है, झगड़े होते हैं, इन्हीं आक्रामक झगड़ों और प्रतिद्वंद्विता का कंपनियां भी भरपूर फायदा उठाती हैं। पर हमें यह हमेशा याद रखना है कि कम वेतन पर भी काम करने वाले श्रमिक जो किसी भी राज्य से आते हैं, हमें उनके साथ अपनी सांस्कृतिक विभाजन को खत्म करना होगा और उनके संवैधानिक अधिकारों का मान करते हुए उनके साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे हम सब मिलकर एक संगठन की तरह काम कर सकें। तो दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु या भारत के अन्य जगहों पर जो प्रवासी श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं और जहां पर स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों के बीच इस तरह के भेदभाव या झगड़े हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया हमें बताएं नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।